श्रुतिकाळवर्ती अरहंताणम अणमोलोये श्रुतिकाळवर्ती सिद्धाणम अणमोलोये श्रुतिकाळवर्ती आयर्याणम अणमोलोये श्रुतिकाळवर्ती उज्जायणम अणमोलोये श्रुतिकाळवर्ती शवशावणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। ईगो में शाशदो अपा ज्ञान दर्शन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन नान लक्षण जीव छे बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुझी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे कई अन्य ते मारु जरी प्रमाण मात्र नथी अरे। ये जानतो अरंत ने गुण द्रव्य ने परियई पणे ये जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथा इने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेम ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे जाने जे कर्म उदय निर्जरा बंद तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ सुत केवली कथिता समय प्रावरू कहो। सुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे या अनुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नम श्री देव्य नम श्री देव्य नम श्री देव्य। समय सार जी परमागम की 320वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 320वीं जो गाथा है वो अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को बताकर वितरागता कैसे प्रकट होवे उसकी गाथा है। ये गाथा में अपना जो त्रिकाल परिपूर्ण परमात्मा नायक देव बताया गया है वो जो जानने देखने वाला आत्मा है परिपूर्ण शुद्ध आत्मा उसको जानने से उसमें अहम करने से उसमें लीनता करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूप वितरागता की प्राप्ति होती है। ऐसे चारे अनुयोग का सार जो वितरागता है वो सभी अनुयोगों में से वितरागता निकलती है। जैसे द्रव्यानुयोग में से वितरागता का प्रकटपना होता है ऐसे सभी अनुयोगों का सार वितरागता को प्रकट करना ऐसा होता है। अभी इसमें जो 320वीं गाथा में अपना जो विषय चल रहा है उसमें वो गाथा का पहले पैराग्राफ है वो अपन थोड़ा ले लेते हैं नीचे बाकी है उसको। जिस प्रकार नेत्र अग्नि रूप दृश्य को देखता है परंतु अग्नि रूप वस्तु को प्रज्वलित करने वाले पुरुष के समान उसका कर्ता नहीं है उसी प्रकार तपे हुए लोह पिंड के समान अनुभव रूप से भोगता नहीं है वेदता नहीं है इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है न भोगता है। अथवा इसका अर्थ है कि न केवल दृष्टि अपितु काई ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का अकारक अकर्ता और उसी प्रकार अवेदक और अभोक्ता है। ऐसा होता हुआ जीव क्या करता है कि जान दिए बंद मोक्षम, जानता है किनको जानता है, बंद तथा मोक्ष को जानता है, न केवल बंद मोक्ष को जानता है अपितु शुभ अशुभ रूप कर्मोदय को सविपाक अविपाक रूप से अथवा सकाम अकाम रूप से होने वाली दोनों प्रकार की निर्जरा को भी जानता है। ये पूरा जो प्रथम पैराग्राफ है उसमें जो जो चर्चाएं आचार्य भगवान ने रखी है उसमें पहले जानना देखना सिद्ध किया है, कर्ता भोक्तापना नहीं है आत्मा में पर पदार्थ का या मोरा द्वेष का वो सिद्ध किया है। बाद में ऐसा कर्ता भोक्तापना जिसको छूट जाता है उसकी दृष्टि कर्ता भोक्तापने से छूटकर अकर्ता स्वभावी पर आ जाती है, तो अकर्ता स्वभावी ज्ञायक पर दृष्टि आने से वो जीव शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो जाता है। वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है उसको ज्ञानी बोला जाता है। उसको अपरिणामी पर दृष्टि होके उसका परिणमन अपरिणामी के लक्ष्य से हो गया तो उसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है। वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है वो भी शुद्ध उपादान रूप से उसके विकल्पात्मक अवस्था उसको आती है, तभी भी उसका शुद्ध उपादान रूप से वो अशुद्ध उपादान की पर्याय जो उसकी प्रकट होती है उसका भी वो कर्ता भोक्ता नहीं होता है, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया है। इसलिए अशुद्ध उपादान भी उसकी पर्याय में अभी भी प्रकट हो रहा है, परिपूर्ण वितरागता जब तक नहीं होती है तब तक, तो भी वो भी उसको शुद्ध उपादान रूप से उसको जानता रहता है। उसको भी कर्ता वो नहीं है, उसका भोक्ता भी वो नहीं है। ऐसे शुद्ध ज्ञान माने ज्ञायक भाव और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव यानी कि ज्ञानी जो जीव हुआ है वो भी कोई पदार्थ का परता या उसके पर्याय में बहिर्लक से प्रकट होता हुआ रागादि भाव का भी कर्ता भोक्ता वो नहीं होता है। अथवा इसका अर्थ है कि न केवल दृष्टि माने कि जिसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर पड़ी है वो दृष्टि वाला जीव तो कर्ता भोक्ता नहीं है, मगर स्थायी ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का अकारक अकर्ता और उसी प्रकार अवेदक और अभोक्ता है। स्थायी ज्ञान माने केवली भगवान भी जो उसकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है उसका भी वो कर्ता नहीं है और उसको योग्यता कंपन चलता है, उसका भोक्ता भी केवली भगवान नहीं है। वो अपने स्वरूप में स्थित है, माने कि दृष्टि का विषय जिसको दृष्टि में आया और दृष्टि का विषय दृष्टि में आके उसकी परिणति आगे बढ़ते बढ़ते सपक श्रेणी करके उसको जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो केवली भगवान भी ना तो उसकी वाणी जो खीरती है उसका भी कर्ता नहीं है और उसको अभी वो क्या है कि योग का कंपन चालू है, वो अयोगी केवली अभी नहीं हुए है, अयोगी दशा नहीं आई है, तो योग का कंपन भी इतना चलता है तो उसका भी भोक्ता केवली परमात्मा नहीं है। इसलिए शुद्ध ज्ञान भी कर्ता भोक्ता नहीं है, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी कर्ता भोक्ता नहीं है दृष्टि अपेक्षा से, और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव से आगे बढ़ के केवल ज्ञान होता है, साहित्य ज्ञान हो जाता है, वो भी सचमुच में कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि केवली को रागादि भाव तो है ही नहीं, वो तो यथाख्या चारित्र होते ही चले जाते हैं, इसलिए उसका कर्ता भोक्ता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मगर उसकी जो क्रियाएं चलती है उसमें भी जो उसको योग्यता कंपन होता है उसका भी वो भोक्ता नहीं होता और उसकी वाणी का कर्ता भी वो केवली भगवान साई ज्ञान जिसको प्रकट होता है वो नहीं होता, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। ऐसा होता हुआ माने कि शुद्ध ज्ञायक भाव शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और साई ज्ञान वाला केवली परमात्मा, वो ऐसा होता हुआ वो जीव कर्ता क्या है, ऐसा प्रश्न आया है कि तो फिर वो कर्ता क्या है, तो इसमें बात आई है कि वो मात्र जानता है, मात्र जानता है। आचार्य भगवान ने खुद ने प्रश्न उठा के खुद ने जवाब दिया कि फिर वो कर्ता क्या है, तो फिर तो बोलते हैं कि वो मात्र जानता है।
जैसे विनायक भाव भी जाननहार है, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव दृष्टि अपेक्षा से वो भी जाननहार है, और केवली परमात्मा भी जाननहार है। वो मात्र जानता है, वो कुछ करता भोगता नहीं है। वो अपना अतीन्द्रिय आनंद जो आता है उसको, परिपूर्ण केवली हुआ उसको अतीन्द्रिय आनंद आता है, सम्यक दृष्टि को भी उसके अनुरूप अतीन्द्रिय आनंद आता है उसका। वो बाह्य को भोगता नहीं है, उस अपेक्षा से उसको भोगता है ऐसा बोला जाता है। सचमुच में वो तो अपनी परिपूर्ण स्वभाव में स्थित रहता है, इसलिए वो अतीन्द्रिय आनंद को भी भोगता है, वो भी सचमुच में व्यवहार है। वो तो अपने में ही रहता है, इसलिए अपना अकर्ता स्वभाव में ही बसा हुआ है, ऐसा शुद्ध ज्ञायक भाव, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और केवली परमात्मा जिसको क्षयिक ज्ञान प्रकट हुआ है, वो भी मात्र जानन देखनहार रहता है, वो कुछ करता भोगता होता नहीं है। तो किसको वो क्या करता है, तो कि जानता है। फिर बोलते हैं किसको जानता है, जानता है वो किसको जानता है, तो कि बंध और मोक्ष को जानता है। न केवल बंध और मोक्ष को जानता है, अपितु शुभ अशुभ रूप कर्मोदय को और सविपाक अविपाक रूप से अथवा सकाम अकाम रूप से होने वाली दोनों प्रकार की निजरा को भी जानता है। बंध मोक्ष को जानता है और बंध मोक्ष को जानता है और शुभ अशुभ रूप जो उसकी शुभ अशुभ रूप कर्मोदयी सविपाक अविपाक निर्जरा और सकाम अकाम निर्जरा चलती है उसको भी वो जानता है। यानी कि जितनी निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा माने कि मनुष्य गति चलती है और दूसरी गति का उदय है वो खिर जाता है तो उसको सकाम निर्जरा बोली जाती है, और सविपाक निद्रा गति आती है और गति खिर जाती है। मनुष्य गति है, दूसरी गति का उदय भी आता है मगर वो खिर जाता है तो उसको बोला जाता है सविपाक निद्रा। और अविपाक निद्रा है वो अविपाक निद्रा तो ग्लानी को होती है, अपने स्वरूप के सन्मुख उसका पुरुषार्थ चलता है तो उसको जो निद्रा होती है उसको अविपाक निद्रा बोली जाती है। ये निद्रा निमित की बातें हैं और सकाम और अकाम निजरा है वो उपादान से है। सकाम माने कि काम सहित अपना पुरुषार्थ से अपने नायक भाव को जिसने पकड़ा है तो उसको बोला जाता है कि उसको सकाम निजरा चल रही है। और अकाम निजरा माने कोई प्रतिकूल संयोग आता है उसमें भी वो विचलित नहीं होता है उसको बोला जाता है अकाम निजरा। ऐसे सविपाक अविपाक निजरा और सकाम और अकाम निद्रा, सविपाक अविपाक कर्म और राग की अपेक्षा से है और सकाम और अकाम निद्रा है वो अपने पुरुषार्थ की उपादान की अपेक्षा से कहने में आती है। ऐसा जो जानने वाला दिखाया अभी वो उसके दूसरे पैराग्राफ में इस प्रकार सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव, इस प्रकार माने कि जो जानने वाला है जो जानता देखता है, इस प्रकार वो सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से यह जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्ष आदि के कारण तथा परिणाम से रहित है। अभी क्या कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार सर्व विशुद्ध माने कि सर्व प्रकार से अपना जो ज्ञायक भाव है चैतन्य परमात्मा है ध्रुव परमात्मा है वो सर्व प्रकार से विशुद्ध है और सर्व प्रकार से विशुद्ध है उसको ही पारिणामिक भाव बोला जाता है, निरपेक्ष भाव बोला जाता है। उसमें शुद्धता होती नहीं है, वो प्रथम से ही सर्व प्रकार से विशुद्ध रहता है। वो विशुद्ध भाव वो चैतन्य भाव वो परम पारिणामिक भाव वो परम पारिणामिक भाव परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत, शुद्ध उपादान भूत माने अपना त्रिकाली द्रव्य है वो शुद्ध और उपादान और भूत माने की होना होने रूप शुद्ध उपादान भूत है वो सर्व प्रकार सर्व विशुद्ध। इस प्रकार सर्व विशुद्ध पारिणामी परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से यह जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्ष आदि के कारण तथा परिणाम से रहित है। क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञायक भाव जो है त्रिकाली परमात्मा है वो प्रथम से ही पारिणामिक भाव सर्व विशुद्ध पणे रहता है और सर्व विशुद्ध पने रहने से वो शुद्ध उपादान भूत है, माने की शुद्धता उसमें है, खुद का त्रिकाली उपादान है, वो उसका अस्तित्व प्रथम से ही मौजूदगी रूप है, उसको शुद्ध उपादान भूत बोला जाता है। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से यह जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व और बंध भोक्त आदि से आदि के कारण तथा परिणाम से रहित है। वो बंध मोक्ष आदि का कारण या तो बंध मोक्ष के परिणाम उससे भी वो रहित है। इस प्रकार समुदाय पाटनिका में सूचित किया गया है। उसके बाद चार गाथाओं द्वारा वो बंध मोक्ष आदि के कारण और परिणाम से रहित है, वो अपनी चर्चा बहुत हो गई है। जो बंध का भी कारण नहीं है, मोक्ष का भी कारण नहीं है, उस नायक भाव चैतन्य परमात्मा है, वो अगर मोक्ष का कारण होवे तो पूर्व पर्याय में बंध का भी कारण होवे, और बंध का कारण होवे तो सदा बंध ही चलता रहे, इसीलिए वो बंध का कारण नहीं है। और मोक्ष का कारण होवे तो प्रथम से ही परिपूर्ण आत्मा तो विद्यमान है, तो फिर क्यों मोक्ष नहीं होता है। इसलिए वो जो परिणाम है, वो परिणाम अपने त्रिकालिक नायक से सर्वथा रहित होने से, वो शुद्ध उपादान भूत से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से बंध मोक्ष का कारण कभी भी अपना चैतन्य परमात्मा बन नहीं सकता। क्योंकि चैतन्य परमात्मा जो नायक भाव है उसका लक्षण अलग है और परिणाम का लक्षण अलग है। जिसके लक्षण अलग अलग होते हैं वो किसी का कारण कार्य बन नहीं सकता है। चार भाव के लक्षण अलग है और त्रिकाली चैतन्य स्वभाव परिपूर्ण परमात्मा है उसका लक्षण अलग है। वो जो परिणाम के लक्षण वाला भाव है, बंध रूप भाव या तो मोक्ष रूप भाव, वो सभी भाव सचमुच में कर्म सापेक्ष है। सापेक्षता का कारण कभी निरपेक्ष परमात्मा त्रिकाली द्रव्य ध्रुव परमात्मा चैतन्य परमात्मा उसका कारण कभी होता नहीं है। इसलिए वो बंध मोक्ष और उसके कारण और उसके परिणाम से रहित है। इस प्रकार समुदाय पाटनिका में सूचित किया गया है। उसके बाद चार गाथाओं द्वारा जीव के अकर्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से, अभी ये सब बातें हैं वो जयसेन आचार्य की टीका में जितनी गाथा ये क्रमबद्ध पर्याय की 308 से 11 के बाद में 320 के बीच में जितनी गाथाएं आई है उसका विवेचन इसमें है। इस प्रकार समुदाय पाटनिका में सूचित किया गया है। इसके बाद चार गाथाओं द्वारा जीव के अकर्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से सामान्य विवेचन किया है, और फिर से चार गाथाओं द्वारा शुद्ध आत्मा को भी जो प्रकृतियों का बंध होता है वह अज्ञान का महात्म्य है, इस प्रकार अज्ञान की सामर्थ्य के कथन रूप विशेष विवेचन किया गया है। अज्ञान की भी महात्म्य बताया है उसने कि ऐसा परिपूर्ण परमात्मा उसके पास मौजूद होने पर भी उसका अज्ञान नहीं गया है, क्योंकि उसने उसकी दृष्टि नहीं की है, उस तरफ उसने लक्ष्य नहीं किया है। इसलिए अनादि से जीव होने पर भी उसकी दृष्टि और ज्ञान न होने से उसका अज्ञान रूप भाव प्रति समय चलता रहता है, प्रति समय चलता रहता है। वो भी कितना अज्ञान का महात्म्य है कि इतना परिपूर्ण परमात्मा ऐसा उसके पास मौजूद होने पर भी उस पर वो दृष्टि नहीं जाती, ऐसा अज्ञान उसका वो भाव को नहीं समझने से उसका अज्ञान भाव अनादि से चल रहा है, वो भी कोई अज्ञान का महात्म्य है। और इस प्रकार अज्ञान की सामर्थ्य के कथन रूप विशेष विवेचन किया है। फिर चार गाथाओं द्वारा जीव के अभोक्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से विवेचन किया है। ये सब जो बात है ना वो अकर्तृत्व अभोक्तृत्व सिद्ध करने के लिए है, और अकर्तृत्व अभोक्तृत्व जिसके ज्ञान प्रदान में नहीं आता है उसको अज्ञान भाव प्रकट होता है ऐसा कहना चाहते हैं। उसके द्वारा जीव के अभोक्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से विवेचन किया है। उसके बाद शुद्ध निश्चय नहीं से उस ही जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा बंध मोक्ष आदि के कारण एवं परिणाम के निषेध रूप 12 गाथाओं में किए गए व्याख्यान के उपसंहार रूप से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। अभी ये गाथा का भाव पूरा हुआ, अभी दूसरा उसमें कुछ विशेष आचार्य भगवान कहना चाहते, अपने को उस पर जाना है, इसलिए ये पैराग्राफ जल्दी से लिया है अपने। इस प्रकार जैसे ना आचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप तात्पर्य नामक समय सार की व्याख्या में मोक्ष अधिकार संबंधी 14 गाथाओं द्वारा 4 अंतराधिकारों द्वारा चुलिका पूर्ण हुई, अथवा द्वितीय प्रकार के व्याख्यान द्वारा यहाँ मोक्षाधिकार समाप्त हुआ। अभी आचार्य भगवान कहते हैं कि यहाँ अब हम कुछ विशेष, अब कुछ यह विशेष यह है वो हम कहना चाहते हैं, वो विशेष कहना चाहते हैं, उसके द्वारा पांचों भाव का स्वरूप इसमें बता रहे हैं। जो चार भाव पर्याय रूप है, औदयिक, औपसमिक, सायोपसमिक और स्थायी, और द्रव्य रूप जो एक भाव है परम पारिणामिक भाव, चैतन्य भाव, शुद्ध भाव, अखंड भाव, वो पांच भाव जो जीव के भाव कहे हुए तत्वार्थ सूत्र में, वो पांच भाव उसमें चार भाव पर्याय के भाव है और एक भाव द्रव्य का भाव है, वो पांच भाव की चर्चा अभी इसमें विशेष रूप से आचार्य भगवान उठा रहे हैं कि औपसमिक आदि पांच भावों में, औपसमिक आदि पांच भाव है, जैसे औपसमिक, सायोपसमिक और स्थायिक भाव वो परिणाम के शुद्ध भाव है, औदयिक भाव है रागादि भाव वो परिणाम के अशुद्ध भाव है, और त्रिकाली शुद्ध भाव है वो तो परम परिणामिक भाव है, वो औपसमिक, सायोपसमिक, स्थायिक भाव है वो पर्याय में शुद्धता रूप प्रकट होने वाले भाव है, औदयिक भाव है वो भी पर्याय में प्रकट होने वाले रागादि भाव है, और उसके साथ में ही जो द्रव्य स्वभाव रहता है वो द्रव्य स्वभाव परम पारिणामिक भाव शुद्ध भाव प्रथम से ही परिपूर्ण भाव कभी प्रकट नहीं होने वाला सदाय प्रकट रहने वाला भाव, ऐसा जो भाव है उसको त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक भाव बोला जाता है, अवेद भाव, अखंड भाव बोला जाता है, दृष्टि का विषय बोला जाता है, ध्यान का ध्येय बोला जाता है, ज्ञान का ज्ञेय बोला जाता है, श्रद्धा का श्रद्धेय बोला जाता है, वो पंचम परम पारिणामिक भाव जो है वो त्रिकालिक नायक भाव के साथ में वो चार भाव पर्याय रूप भाव रहते हैं, तो उसमें कौन से भाव से मोक्ष होता है, मोक्ष की प्राप्ति कौन से भाव से होती है और मोक्ष का कारण सचमुच में कौन है। हमने आगे बता दिया कि मोक्ष का कारण त्रिकाली ध्रुव परमात्मा नहीं है, वो बंध का भी कारण नहीं है, मोक्ष का भी कारण नहीं है, बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है, तो मोक्ष तो होता है जीव का, तो मोक्ष का कारण भी कोई होना चाहिए, तो मोक्ष का कारण क्या है, हे अपने को ये बताओ आप कि मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष कैसे हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसी समझ चलनी चाहिए। इस प्रकार से ये प्रकरण उठाया है इसमें कि औपसमिक आदि पांच भावों में किस भाव से मोक्ष होता है, इस पर अब विचार करते हैं, कौन से भाव से मोक्ष होता है इस पर अभी विचार करते हैं। वहाँ औपसमिक, सायोपसमिक, स्थायिक और औदयिक ये चार भाव पर्याय रूप होते हैं, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वय रूप आत्म पदार्थ कहलाता है। अभी ये पांच भावों में चार भाव पर्याय रूप है और एक भाव त्रिकाली द्रव्य रूप है, वो पांचों भाव जो है वो जीव के भाव है और जीव के भाव पांचों है, उसमें से आप दो भेद करो तो उसमें चार भाव पर्याय रूप है और एक भाव द्रव्य रूप है। चार भाव जो पर्याय रूप है वो औपसमिक, प्रयोगसमिक, सायिक और औदयिक, और एक त्रिकाली भाव द्रव्य रूप है वो परम पारिणामिक भाव है। वो दोनों को मिला के देखो तो वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। इसमें आया ना द्रव्य पर्याय द्वय है, औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक और औदयिक, ये चार भाव पर्याय रूप होते हैं, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वय रूप आत्म पदार्थ कहलाता है। आत्म पदार्थ किसे कहते हैं कि जिसमें द्रव्य और पर्याय का जोड़ा हो, उसको दोनों को एक साथ देखना उसको आत्म पदार्थ कहा जाता है। आत्म पदार्थ क्या है, पर से पृथकता बताता है और प्रमाण ज्ञान में जीव को लाता है, और आत्म वस्तु है वो प्रमाण ज्ञान में से भेद ज्ञान करके निश्चय स्वरूप पर दृष्टि ले जाता है। ऐसे निश्चय का विषय त्रिकाली द्रव्य शुद्ध परमात्मा है और व्यवहार का विषय ये चार भाव रूप पर्याय है, वो दोनों मिला के एक प्रमाण ज्ञान का विषय है, उसको बोला जाता है द्रव्य पर्याय द्वय। द्रव्य और पर्याय को एक साथ में देखना उसको प्रमाण ज्ञान बोला जाता है। वो प्रमाण ज्ञान पूज्य नहीं है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान का विषय ज्यादा होने पर भी उसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता है, इसलिए वो प्रमाण ज्ञान को पूज्य नहीं कहा है। पूज्य जो है वो निश्चय नहीं का विषय जो त्रिकाली द्रव्य है वो पूज्य है, क्योंकि उसमें वो व्यवहार का निषेधक है, इसलिए वो प्रमाण ज्ञान में त्रिकाली द्रव्य है वो पूज्य है। और जो चार भाव पर्याय रूप भाव है वो सचमुच में व्यवहार नहीं का विषय होने से उसको पूज्य नहीं कहा जाता। प्रमाण ज्ञान के विषय में दोनों साथ में रहते हैं, द्रव्य और पर्याय, और द्रव्य और पर्याय का जोड़ा उसको आत्म पदार्थ बोला जाता है। मगर पदार्थ में प्रमाण की सिद्धि होती है और नहीं से अपने शुद्ध त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि होती है। शुद्ध नहीं से अपने त्रिकाली द्रव्य नजर में आता है और व्यवहार नहीं से ये चार पर्याय नजर में आती है। दोनों को एक साथ में देखने वाला को प्रमाण ज्ञान बोला जाता है। अभी ये प्रमाण ज्ञान में से निश्चय निकाल के ये मोक्ष कैसे होवे, तो इसके पहले मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होवे, औपचारिक सार्वजनिक और सायिक भाव कैसे प्रकट होवे, वो बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये अभी त्रिकाली कारण परमात्मा ध्रुव परमात्मा उसको आपने अकारण बताया, मोक्ष का कारण नहीं बताया। तो मोक्ष किस विधि से कैसे कौन से भाव से होता है, तो मोक्ष का कारण कौन है, तो मोक्ष का कारण जो है वो मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग होने से मोक्ष मार्ग के बिना कभी कोई जीव का मोक्ष नहीं होता। सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसको मोक्ष मार्ग बोला जाता है। और वो आता है और उसको कारण माने कि उसको कारण बना के मोक्ष की पर्याय प्राप्त नहीं होती है। वो पर्याय अपने त्रिकाली द्रव्य पर ही अहम करती है तब ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मगर मोक्ष की प्राप्ति के पहले ये सम्यक दर्शन नान चारी प्राणी मोक्ष मार्ग रूप पर्याय होती ही है, और वो होती है उसके बाद में मोक्ष होता है, इसलिए उसको उसका मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण कहा गया है। सचमुच में कारण तो निश्चय से देखे तो मोक्ष की पर्याय मोक्ष का कारण है। मोक्ष मार्ग को कारण करना कहना वो भी व्यवहार है, और त्रिकाली द्रव्य को कारण कहना वो भी सचमुच में व्यवहार है। इसलिए इसमें जो मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण कहा है, औपचारिक सार्वजनिक और सायिक संकित हो उसको भी मोक्ष का मार्ग कहा गया है। वो मोक्ष का मार्ग नहीं हो तो मोक्ष प्रकट नहीं होता है। उस अपेक्षा से उसको कारण बताकर कि मोक्ष का मार्ग पहले होता है बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस अपेक्षा से यहाँ मोक्ष मार्ग को कारण कहा गया है। मगर वो मोक्ष मार्ग भी प्रकट कैसे होता है कि जो मोक्ष मार्ग प्रकट होने के लिए अपनी शुद्धात्म द्रव्य पे उसकी नजर नहीं आवे, अपना त्रिकाली द्रव्य का उसको बहुमान नहीं आवे, अपनी शुद्ध चैतन्य वस्तु पर उसका त्राटक नहीं होवे कि मैं परिपूर्ण शुद्ध विनायक हूँ, एक रूप अखंड परमात्मा हूँ, ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसा अहम जब होता है उसके ऊपर तब मोक्ष मार्ग उसको शुरू हो जाता है। तो वो पूरा आत्म पदार्थ है, उसमें आत्म पदार्थ में से वो अपना शुद्ध स्वरूप उसमें से निकालता है। प्रमाण के बाहर कभी जाना नहीं और प्रमाण में कभी अटकना नहीं। प्रमाण के बाहर तो अपना कुछ है ही नहीं, और प्रमाण ज्ञान में जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है अगर उसमें ही जीव अटका रहेगा तो वो प्रमाण ज्ञान में से शुद्ध नहीं का विषय जो त्रिकाली द्रव्य है, जो अपना परमात्मा है, जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, उसको निकाल नहीं पाएगा। अगर उसको नहीं निकालेगा तो उसको ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो गई। प्रमाण ज्ञान वो होता है उसका ज्ञान करके उसकी दृष्टि द्रव्य पर जानी चाहिए। अगर उसकी दृष्टि द्रव्य पर चली जाती है तो वहाँ जो पर्याय है वो औपचारिक सार्वजनिक कायिक भाव रूप हो जाती है, उसको बोला जाता है मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग का जो मोक्ष मार्ग की जो बात है तो मोक्ष मार्ग को कारण कहा मोक्ष का, क्योंकि अपने त्रिकाली परमात्मा को पहले अकारण परमात्मा इसने सिद्ध किया है कि बंध मोक्ष का कारण वो अकारण परमात्मा है ही नहीं। तो बंध मोक्ष कैसे होता है और मोक्ष का कारण कौन है, तो मोक्ष का कारण औपचारिक सार्वजनिक और सायिक भाव है, वो शुद्ध पर्याय है, और औदयिक भाव है, दादाजी रूप भाव है, वो अशुद्ध पर्याय है, तो ये जो शुद्ध पर्याय अपने स्वभाव के लक्ष्य से प्रकट हुई उसको मोक्ष का मार्ग बोला जाता है, और मोक्ष मार्ग आगे बढ़ते बढ़ते उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। औष्टमिक आदि पांच भावों में किस भाव से मोक्ष होता है इस पर विचार करते हैं। वहाँ औष्टमिक सायोक्तमिक साई और औदयिक के चार भाव पर्याय रूप होते हैं, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है और परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वय रूप आत्म पदार्थ कहलाता है। इसमें जो पांच ये जो चार भाव आए ना और ये पांचवा पंचम पारिणामिक भाव, उसको नियम सार की 41 गाथा में उसके भेद गिनाए हैं कि उसके 53 भेद है। 53 भेद में औष्टमिक का 2 भेद है, सायोक्तम का 18 भेद है, साईक का 9 भेद है, औदयिक का 21 भेद है, ये चार भाव के 50 भेद है, और 3 भेद पारिणामिक भाव के हैं, उसमें जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, वो 3 भेद वो पांचों भाव के भेद मिला के कुल 53 भेद होते हैं। वो 53 भेद में वो सब चर्चा है उसमें आई है, उसमें आप देख लीजिए वो 53 भेद, किसी को भी देखना है ज्यादा उसमें गहराई में जाना है तो उसमें सब प्रकरण बहुत अच्छी तरह से नियम सार की 41 गाथा में ये प्रकरण बहुत अच्छी तरह से आया है। तो ये जो पांच भाव है उसमें चार भाव के 50 भेद, और ये पंचम भाव के उसमें पारिणामिक भाव जो किया कहा गया वो पारिणामिक भाव का 3 भेद बताया, वो 3 भेद है जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। जो अपना यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी ये बात चल रही है कि जीवत्व किसको कहते हैं, भव्यत्व किसको कहते हैं और अभव्यत्व किसको कहते हैं, तो ये चार भाव पर्याय रूप हो गया, और एक जो पारिणामिक भाव है वो जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व रूप रहता है। तो पारिणामिक भाव का अर्थ क्या है कि पारिणामिक भाव यानी निरपेक्ष भाव, और वो चार भाव वो सापेक्ष भाव, पर्याय रूप भाव वो सापेक्ष भाव, और त्रिकाली द्रव्य रूप भाव वो निरपेक्ष भाव। तो ये 3 भाव जो है जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व वो तीनों निरपेक्ष भाव है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहा गया है। उसमें जो भव्यत्व अभव्यत्व है वो तो पर्यायगत योग्यता है, पर्याय अपेक्षित धर्म बोला जाता है, भव्यत्व शक्ति भी बोली गई उसको, मगर वो शक्ति है वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, वो शक्ति वो पर्याय में पर्याय की शक्ति है, कि पर्याय में जब वो शक्ति प्रकट होती है तो उसको बोला जाता है कि ये पर्याय में इसकी शक्ति थी उसकी व्यक्ति प्रकट हो गई। वो भव्यत्व भाव है वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य में होता तो वो अनादि अनंत वो भव्यत्व भाव देता, भव्यत्व प्राप्त पूरा हो जाता है तो उसको भव्यत्व भाव को भव्यत्व शक्ति वो पर्याय की पर्याय में शक्ति है, क्योंकि ये भव्यत्व भव्य जीव है तो वो भवी जीव में भव्यत्व शक्ति पड़ी हुई है। वो शक्ति कैसी है कि जब उसकी व्यक्ति होगी तो ऐसा बोला जाएगा कि ये जीव में भव्यत्व की शक्ति थी उसकी व्यक्ति हो गई, और अभवी जीव है उसको तो प्रकट होने की भव्यत्व अपना प्रकट होने की योग्यता जिसको नहीं है उसको अभव्यत्व बोला जाता है। और जो जीवत्व शक्ति है वो जीवत्व में भी वो जीवत्व बोला वो भी उसमें भी 2 भाव है, एक शुद्ध जीवत्व है और एक अशुद्ध जीवत्व है। ये पांचों भाव है ना, उसमें से दृष्टि का विषय कहाँ है उसकी ओर अपन जा रहे हैं। ये चार भाव जो पर्याय रूप भाव है उसके जो 50 भेद है वो चार भाव के भेद है, वो एक तरफ है, वो सापेक्षता रूप परिणमन है, वो सब कर्म सापेक्ष परिणमन है, उसमें निमित्त निमित्त की अपेक्षा जरूर लगती है, अगर वो पर्याय भाव को भी अपन पर्याय भाव से देखे तो वो निरपेक्ष है, मगर उसी समय वो भाव में सापेक्ष पना भी निमित्त नैमित्तिक रूप से होता ही है। एक पर्याय है वो एक ही पर्याय निरपेक्ष भी है और वही पर्याय उसी समय सापेक्ष भी है। वो निरपेक्ष कैसे है कि वो पर्याय का स्वकाल प्रकट होने का है, अपनी उपादानगत योग्यता से वो प्रकट हुई है, उसका क्षणिक उपादान से वो प्रकट हुई है, उसका सत्कारक से वो प्रकट हुई है, तो वो पर्याय को अपन क्षणिक उपादान बोलते हैं, निरपेक्ष पर्याय बोलते हैं, अपने से होने वाली पर्याय बोलते हैं, सत्य पर्याय बोलते हैं, अहेतुक पर्याय बोलते हैं, उसको बोला जाता है उसका पर्याय का निरपेक्ष भाव। और उसी समय वही पर्याय अभी राग रूप हुई तो राग में बाह्य में निमित्त पना है, कर्म का उदय है न है, तो वो उसकी सापेक्षता है। और यहाँ वितरागता हुई वो पर्याय में तो बाह्य में निमित्त का अनुभव अवश्य होता है, तो वो निमित्त नैमित्त से भी उसको देखा जाता है वो पर्याय को, इसलिए वो सापेक्ष है। और वही पर्याय को अपने स्वभाव से देखो, पर्याय को अपने क्षणिक उपादान से देखो, तो वही पर्याय अपने में निरपेक्ष परिणाम उसका चल रहा है। इसलिए वो चारों भाव पर्याय रूप भाव वो उसकी उसके स्वभाव से देखो तो निरपेक्ष है, मगर उसमें कोई न कोई निमित्त सापेक्षता पड़ी हुई है नैमित्तिक होने के कारण, नैमित्तिक होने के काल में, इसलिए वो चारों भाव को सापेक्ष बोला जाता है। और एक जो परम परिणाम भाव है, त्रिकाली भाव है, शुद्ध भाव है, वो निरपेक्ष भाव है। और उसमें भी ये तीन परिणामिक भाव के भेद निकाले, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। तो भव्यत्व और अभव्यत्व वो पर्यायगत योग्यता रूप लायकात में चला जाता है। और एक जो जीवत्व भाव है वो जीवत्व के दो भेद है, एक शुद्ध जीवत्व और एक अशुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व जो है वो अशुद्ध जीवत्व 10 प्राण जो है जीव के, 5 इंद्रिया मन वचन काय श्वास और आयुष्य, वो 10 प्राण से जो जीने वाला जीव है उसको अशुद्ध जीवत्व माने के अशुद्ध पारिणामिक की संज्ञा लागू पड़ती है। और उसके साथ में जो शुद्ध जीवत्व है वो शुद्ध जीवत्व, वो त्रिकाली द्रव्य, वो शुद्ध परमात्मा, वो अभेद परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, वहां दृष्टि का विषय पड़ा है। माने कि आप पांचों भाव में से 4 भाव पर्याय के निकालो और पारिणामिक भाव में आओ, पारिणामिक भाव में आके उसमें भव्यत्व अभव्यत्व भाव पर्यायगत योग्यता पर्याय अपेक्षित धर्म को भी बाहर रखो, और उसके बाद में जीवत्व में आओ तो जीवत्व में भी 10 प्राण रूप जो योग्यता है वो भी जब चीज बना आता है तब नहीं रहती है, इसलिए वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, इसलिए उसको अशुद्ध जीवत्व बोला गया है। इसलिए उसके पार जो एक परमात्मा पड़ा है वो चैतन्य परमात्मा, वो ध्रुव परमात्मा, वो अखंड परमात्मा, वो नायक देव, वो शाश्वत परमात्मा, वो मैं हूँ, ऐसी दृष्टि जीव की होती है, उसको औपतमिक भाव, सयोतमिक भाव और साई समी प्रगट होता है। इस तरह से ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ये पांचों भावों में से पर्याय रूप भावों को बात करके, भव्यत्व अभव्यत्व को बात करके, अशुद्ध पारिणामिक भाव जो 10 प्राण रूप जीवत्व है उसको भी बाहर करके, जो परिपूर्ण परमात्मा शुद्ध चैतन्य त्रिकाली द्रव्य वो मैं हूँ, ऐसा जब उसका अहम चलता है उधर, तब ये मोक्ष मार्ग की पर्याय की प्रगटता होती है। ये पांचों भाव अपने हैं, अपने में है, अपने द्रव्य पर्याय में है, ये पांचों भाव कहीं बाहर नहीं है। कि प्रमाण का विषय बताया, द्रव्य पर्याय का विषय बताया, आत्म पदार्थ का विषय बताया, प्रमाण ज्ञान का विषय बताया, मगर प्रमाण ज्ञान में जो अटकता है वो अपने ध्रुव स्वभाव की तरफ नहीं जा सकता है। तो प्रमाण में कभी अटकना नहीं, प्रमाण में बाहर, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, और प्रमाण में से अपना शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं का विषय जो त्रिकाली द्रव्य है, वो जो शुद्ध जीवत्व है वो परिपूर्ण परमात्मा है, विनायक देव है, अखंड परमात्मा है, बस उसी पर अपनी नजर कैसे जावे, ऐसा ही प्रयत्न चले तो उस पर नजर जरूर जाती है। अभी भाई साहब ने पंच परावर्तन की बहुत चर्चा की, बहुत अच्छी चर्चा। अभी उसने बोला कि ये तो सब हो गया है, अभी उसको ज्यादा याद नहीं करना, हो चुका है उसका ज्ञान रख के फिर वो ज्ञान को भी छोड़ देना और दृष्टि अपने ज्ञायक पर लगाना, अपने ज्ञायक भाव पर दृष्टि ले जाना, अपना शुद्ध त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि ले जाना, अपनी परिपूर्ण परमात्म वस्तु पर दृष्टि ले जाना। ये जो जानने का विषय है उसको जान के फिर उस ओर से नजर हटा लेना, ये सब जानने के विषय है। ये जानने के विषय ज्ञान करने के लिए जरूरी है, मगर ज्ञान करके फिर उसी में उलझना नहीं, फिर उसमें अटकना नहीं। उसमें अटकोगे तो फिर वो परिणाम की शुद्धता कभी नहीं आएगी। उसका ज्ञान करके, उसको समझ के, फिर वहां से दृष्टि हटा के, मेरा चैतन्य परमात्मा कैसा है, मैं नायक भाव कैसा हूँ, मेरी परिपूर्णता कहाँ है, कौन सा ऐसा मेरा भाव है कि जिसमें कभी पंच परावर्तन हुआ ही नहीं है, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ऐसा जो पंच परावर्तन है वो जिसमें होता ही नहीं है, ऐसा मैं त्रिकारी शाश्वत परमात्मा हूँ, जो होता है वो पर्याय में होता है और वो पर्याय मेरे द्रव्य में नहीं है, ऐसी शुद्धता रूप मेरी वस्तु है, ऐसा उसको अंदर से विश्वास आने लगेगा, ऐसा उसको एहसास लगेगा अपने स्वरूप का, ऐसा भाव उसको अगर प्रकट हो जाएगा तो ये जो पर्याय रूप भाव है उस पर से उसकी दृष्टि छूट के द्रव्य स्वभाव पर उसकी दृष्टि आ जाएगी। और सब जीव का कर्तव्य तो यही है कि ये भाव में मेरी दृष्टि कैसे द्रव्य पर चली जाए। पुरुषार्थ तो यही करना है कि मेरा नायक भाव ऐसा है, मेरी परिपूर्णता ऐसी है, मेरा अभेद स्वभाव ऐसा है, मैं शाश्वत परमात्मा विराजमान हूँ और मेरे में भाव कैसे हो गए। भाव का भाव जिसमें नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, ऐसा मैं परमात्मा भव्य परमात्मा हूँ, शाश्वत परमात्मा हूँ, तो उसमें तो भाव ही नहीं है। जहाँ भाव होते हैं वहाँ त्रिकाली परमात्मा नहीं है और जहाँ त्रिकाली परमात्मा है वहाँ कोई भाव का भाव या भाव है नहीं। ऐसा अपना सुंदर व्यवस्थित अपना जो आत्म स्वरूप है उसको समझने का प्रयास करना अत्यंत जरूरी है। उसको समझ में आएगा वो भाव तो उसकी पर्याय में विशुद्धता प्रकट होते 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 ही आगे बढ़ते बढ़ते उसका अहम द्रव्य में हो ही जाएगा। और वो अहम करने के लिए त्रिकाली स्वभाव कैसा है वो पहले में पहले उसको समझना पड़ेगा। त्रिकाली स्वभाव में क्या भरा है, अनादि अनंत परा उसका कैसा है, असंख्य प्रदेश कैसा है। देखो ये बात ऐसी है कि कोई भी विषय अपन समझते हैं ना, तो जैसे त्रिकाली भाव अरुचि है ना, तो वो ऐसे कोई भाव भी अपने को दिखते नहीं है, हैं? कोई भाव नहीं दिखते है अपने को। अपने को शरीर दिखता है और बाह्य पदार्थ दिखता है, कोई भाव नहीं दिखता है। तो जैसे दूसरे भाव का वर्णन है ऐसे ही एक नायक भाव का वर्णन है। ये अरूपी परमात्मा है मगर ज्ञानमय है और प्रति समय ज्ञान का उपयोग सब जीव के पास प्रकट है। तीन भाव हमेशा रहता है अज्ञानी के पास भी, एक पारिणामिक भाव, एक सयोत्तम भाव, एक औदयिक भाव। औदयिक भाव रागादिक भाव है, सयोत्तम भाव ज्ञान रूप है और त्रिकाली द्रव्य परम पारिणामिक भाव रूप है, है? तो वो ट्रायंगल में सयोत्तम ज्ञान जो है उपयोग रूप है उसका ज्ञान, वो प्रति समय प्रकट है। उसमें जानना 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 ऐसी क्रिया चल रही है और वो क्रिया में रागादी भाव प्रतिभाषित होते हैं और नायक भी प्रतिभाषित होता है। ऐसा मेरा ज्ञान प्रकट है, नित्य प्रकट है, प्रत्येक समय में उपयोग प्रकट है जीव के पास। और वो उपयोग ऐसा है कि वो उपयोग ने कभी अपने सुधात्मा को छोड़ा ही नहीं है। वो उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है मगर वो मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। और रागादी भाव का प्रतिभास देख के अपना ज्ञेयाकार ज्ञान में जो प्रतिभास होता है वो ज्ञेयाकार ज्ञान की तरफ लक्ष करके राग मेरा है ऐसा परिणमन करता रहता है। इसलिए रागादी भाव से दृष्टि नहीं छूटती है, औदयिक भाव से दृष्टि नहीं छूटती है। सचमुच में सब जीव को ज्ञान जानने में आता है और कुछ जानने में नहीं आता है। राग को जानना हो तो भी पहले ज्ञान को जानना पड़ेगा। ज्ञान को जब तक नहीं जानेगा तब राग कैसा है वो भी पता नहीं चलेगा उसको। इसलिए सभी जीव के पास प्रगट रूप ज्ञान है और अपनी अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा से त्रिकाली द्रव्य प्रगट है। द्रव्य भी अपनी अपने से तो अपने प्रगट है, नित्य प्रगट है। पर्याय में आया परंतु प्रगटता नहीं हुई द्रव्य की उस अपेक्षा से बोला जाता है द्रव्य प्रगट है। मगर द्रव्य अपने में प्रगट है और पर्याय का उपयोग भी प्रगट है, रागादि भाव भी प्रगट है। अभी भेद ज्ञान उसको करना है मैं कहां हूं। वो ज्ञान में प्रति समय झलक चलती है, सब अवभाषण होता है, प्रतिभाषण होता है सब चीजों का। वो ज्ञान ग्नेयाकार प्रति समय बनता है, वो ज्ञान है ज्ञान के आकार रूप प्रति समय ग्नेयाकार बनता है और ग्नेयाकार ज्ञान में सब झलकता है। वो ग्नेयाकार बनता है, वो जैसा बाहर में ज्ञेय है ऐसा ही ग्नेयाकार बनता है। वो ग्नेयाकार है ज्ञान मगर वो ज्ञान का परिणमन प्रत्येक समय चलता है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है। वो ज्ञेयाकार ज्ञान में बाह्य की क्रियाएं जितनी चलती है, शरीर की क्रिया, रागादि की क्रिया, वो उसको झलकन में पता चलती है ज्ञेयाकार ज्ञान में। तो सचमुच में तो वो जानता है अपने ज्ञेयाकार ज्ञान को। राग तो बाहर है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान को प्रति समय जान रहा है, मगर उसको ज्ञान का विश्वास नहीं आता है कि मुझे ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है। क्योंकि वो ज्ञेयाकार ज्ञान में रागादी भाव की जलकन वाला ज्ञेयाकार ज्ञान को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये राग मेरे में आ गया, ये राग मेरा है, ये राग से कुछ परिणमन हो रहा है, उसको कारण मानकर यहां कार्य की प्रसिद्धि वो करता है। इसलिए उसको ज्ञान दिखने में आने पर भी ज्ञान नहीं दिखता है, राग दिखने में आ जाता है। सचमुच में तो ज्ञान ही दिखता है सबको, ज्ञान ही जानने में आता है। कोई जीव ने आज तक कोई ज्ञेय को जाना नहीं है, वो सभी जीव ने सब ज्ञेय को अपने ज्ञान में रहकर जाना है। ऐसा ये स्वभाव है, ऐसी अपनी व्यवस्था है ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता की, और ऐसा अपना परिपूर्ण स्वभाव परम पारिणामिक भाव दृष्टि का विषय है। वो दृष्टि का विषय ये चारों भाव से पार, भव्य को अभव्यत्व से पार, पारिणामिक भाव शुद्ध जीवत्व है, उसमें भी अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व, वो शुद्ध जीवत्व है वो परम पारिणामिक भाव है, अशुद्ध जीवत्व है पारिणामिक है, भव्य तो पारिणामिक है, अभव्य तो पारिणामिक है, और वो शुद्ध जीवत्व है वो परम पारिणामिक है, पूजनिक है, वो मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है, वो मेरी त्रिकारता है। उसमें त्रिकार 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 अनादि अनंत ध्रुव अपना ध्रुवत्व लेके अंदर में विराजमान है, ऐसी मेरी वस्तु है। वो वस्तु प्रति समय ये ज्ञान उपयोग में प्रकट है। बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको सदाकाल स्वयं जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है माने अनुभव रूप नहीं, वेदम रूप नहीं, मगर जानने में आ रहा है, मगर उसको उसका विश्वास नहीं आता है। जो दिखता है ना उसका विश्वास आता है, मगर जो सचमुच में दिखता है उसका विश्वास नहीं आता। जो बाहर दिखता है उसका उसको बराबर विश्वास है, मगर वो बाहर दिखता है वो किसके माध्यम से दिखता है, किसके आधार से दिखता है, उसको जानने वाला कौन है, वो वस्तु मैं हूं, उसका उसको स्वीकार नहीं आता है। उसको ऐसा लगता है अभी पर्याय में तो ये है, मैं ये परिणाम तो है कि नहीं, ये परिणाम को तो दूर करना पड़ेगा ना, इतना तो विभाव चल रहा है ना, इतनी तो अशुद्धता है कि नहीं। अरे भाई अशुद्धता प्रगट कैसे होती है, इसको भूला है इसलिए तो अशुद्धता पर्याय में है। अभी तू उसको याद कर ले तो अशुद्धता होगी नहीं, वहां शुद्धता प्रकट हो जाएगी। अपने स्वभाव के प्रति लग जावे उसको पर्याय में अशुद्धता होती ही नहीं, वो रागादि प्रगट ही नहीं होता, उसका तो अभाव करने की बात ही नहीं है। वितरांता ही प्रकट हो जाएगी, अपने स्वभाव का स्वीकार आएगा तो अपने स्वभाव की महिमा आएगी, अपना नायक देव का चिंतन चलेगा और बाद में विश्वास रूप प्रतीति आ जाएगी, तो उसको नियम से ये औपसमिक सयोपसमिक और सायिक भाव की प्रगटता होगी होगी न होगी। ऐसा ये पांच भाव का स्वरूप है, वो पांच भाव में से चार पर्याय रूप भाव और पारिणामिक भाव में से भव्यत्व अभव्यत्व और जीवत्व भाव में से अशुद्ध जीवत्व को निकाल के भी मैं परम पारिणामिक भाव शुद्ध जीवत्व में हूं, ऐसी दृष्टि और ज्ञान होवे उसको बोला जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और वो मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष नहीं होता है, इसलिए उसको कारण कहा गया है। उसको कारण बना के मोक्ष नहीं होता है, कारण तो त्रिकाली द्रव्य को बनाता है पर्याय, तब ही मोक्ष की पर्याय प्राप्त होती है। और मोक्ष की पर्याय का कारण सचमुच में तो मोक्ष की पर्याय स्वयं है, और मोक्ष मार्ग को कारण कहना वो भी उपचार है। मगर मोक्ष मार्ग को कारण क्यों कहा, कि मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष नहीं होता है, एक शुद्धता प्रकट हुए बिना परिपूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं होती है, इसलिए मोक्ष मार्ग को कारण कह के मोक्ष को कार्य कहा गया है। ऐसी ये चर्चा है। 320वीं गाथा भी वितरागता को ही प्रकट कराने वाली है, कि वितरागता की शिविर है ना, तो एक तरीके से वितरागता प्रकट होती है। ऐसे वितरागता को समझ कर सभी जीव अपना प्रयाण इस तरफ करे, ऐसी मंगल भावना।